सिद्धि हुई है या स्वरूप सिद्धि नहीं है, अभी अनर्थ दूर हो गया और वो निष्ठा के रूप में या रति उसकी थोड़ी सी आसक्ति हुई है, तो उसका कोई जरूरी जन्म जरूरी नहीं है कि इसी जन्म इसी ब्रह्मांड में हो। जहां पर उसके लिए सुविधा होगी वहां पर उपयुक्त स्थिति में उपयुक्त संग पाने के लिए साधन भजन करने के लिए उपयुक्त देश को जन्म प्रतीक्षा भी कर सकता है, भगवान उसके लिए व्यवस्था करेंगे। इसलिए इन लोगों का उस समय में मारा जाना, इस समय द्वापर के अंत में जन्म लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए जो ब्रह्मांड का संचालन करने वाले हैं। उन्होंने आकर के कहा कि देखो संप्रति काल लेनी आदि समस्त दैत्य लोग पृथ्वी में प्रजाओं का पीड़न कर रहे हैं। देवासुर युद्ध में के समय में देवता दानवों का जो युद्ध हुआ था उसमें हिरण्याक्ष का पुत्र कालनेमी विष्णु के चक्र से मारा गया। अब वही उग्रसेन के पुत्र के रूप में कंस में द्रिमूल दैत्य के औरस से पैदा हुआ। ऊपर से मालूम होता है ये उग्रसेन का पुत्र है किंतु उग्रसेन का पुत्र नहीं, अरिष्ट धेनुक केशी प्रलंब नर सुंदर बाण बलि के पुत्र बाण असंख्य महाबल पराक्रांत ये सब असुर लोग अब इस समय में क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए हैं और पृथ्वी के लिए उत्पात अत्याचार इत्यादि कर रहे हैं। इनको हराना सबके लिए संभव पर नहीं है। ये समस्त दैत्याओं देवताओं का आधार हमारे ऊपर में पृथ्वी का रहेगी हमारे ऊपर में पड़ रहा है, प्रभु आप यदि रक्षा नहीं करें तो हमारा पाताल में जाना अवसंभव। विशेष करके आपने इन चीज इन लोगों की सृष्टि आपने की, ऐसे जीवों की आप क्यों सृष्टि करते हैं? ये नहीं कहा जो उन माने ये तात्पर्य नहीं है उनकी आत्मा की सृष्टि, हाँ उन लोगों को क्यों जन्माया इस जगत में, इसलिए आप ही इसकी विशेष व्यवस्था कर सकते हैं। विशेष इसमें ये ब्रह्मा मैं जाकर के मैं क्या कर सकती हूं, इसलिए इसका निदान मांगने के लिए ब्रह्मा जी जो इस सबका सृष्टि का संचालन कर रहे हैं उनके पास में गई। जब उन लोगों की सृष्टि करते हैं व्यवस्था करते हैं जन्म इत्यादि देते हैं तो जरूर इसकी व्यवस्था करेंगे, इसलिए उनके पास में गई। पृथ्वी जाने के बाद में ब्रह्मा जी से उसकी बात अब अगले कल कहेंगे, आज यहीं तक वंचा कल्पतुर्भ्यस्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधेतं नाम चरणं भजामि राधाम् अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधाम् मधुरस्मितास्यां वदामि राधाम् करुणाभरद्रं ततो मम नास्ति गतिर्नरकः। अथवा भगवान का चरणामृत तीन पुरुषों को तार देता है, ऐसे ही भगवान की कथाएं तीन पुरुषों को तार देती हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है, मतलब प्रसन्न होकर के उनकी प्रशंसा की, साधुवाद दिया और उससे कहने लगे। भागवत की कथा को कौन समझेगा, कौन समझेगा? जज्ञाता नष्ट की रति, भगवान की कथाओं में जिनकी नष्ट की रति है, नष्ट की श्रद्धा नहीं, श्रद्धा निष्ठा हो जाती है तो बुद्धिपूर्वक उसको हरिनाम करता है सुनता है और ये खूब अच्छी तरह से रसास्वादन करेगा जिनकी नैष्ठ की रति है, ये लोग रसास्वादन करेंगे और लोग सुनेंगे भगवत भजन में प्रवृत्त होंगे। और जिनको ऐसी कथा में नैष्ठ की रति हो गई है वो लोग इस चीज का रसास्वादन करेंगे। इसलिए पहले श्लोक में दूसरे श्लोक में बतलाया निगम कल्पतरूर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत संजीतम, युक्तिवत भगवत भागवतम रसमाय मालयम भू रसिका भूभाग रसिका और भालका को संबोधन किया है। अब वो कथा कुछ इसके बारे में भूमि दृप्त निपव्याज कहा तो था दैत्यानिक शताजुथई आक्रांता भूरिभारेण ब्रह्मानं शरणं जय ये तो कहा था। गोल भूत्वा अश्रुमुखी खिन्ना रुदंती करुणं विभो उपस्थितांतिके तस्मै व्यसनं समवे ब्रह्मा पतुपधार्य अतसा देवस्तया सह जगाम सत्रिनस्तीरम क्षीरपयो निधे तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहिता। देखते ही पावा जाच्छे पहले भूमि दीप्त निपव्याज ब्रह्मानं शरणं गौ जयौ इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने एक प्रश्न उठाया ब्रह्मानं शरणं गौ जयौ कहां कहां पर ब्रह्मा जी के पास में गई पृथ्वी क्या वो सप्तलोक में गई जहां की ब्रह्मा जी रहते हैं हाँ? ये गो कहां गई ब्रह्मानं जयौ ब्रह्मा के पास में गाय जो गई रोती हुई गाय के रूप में तो वो कहां गई और ये तो सीधा साधा है कि ये ब्रह्मलोक में गई सप्तलोक में नहीं सप्तलोक में नहीं गई क्यों नहीं गई इसका कारण है इसके पूर्व में जबकि कृष्ण का जन्म नहीं है सत्यजीव का समय था उस समय रैवत अपनी पुत्री रेवती को लेकर ब्रह्मा जी के पास में गए पूछने के लिए इसको किसको हम वर से शादी करें ये ब्रह्मा जी से पूछ करके तब करेंगे योग्य वर से शादी करेंगे तो उस समय हुहू गंधर्व एक प्रकार के होते हैं जो लिप्त करने में और गान करने में बड़े कुशल होते हैं उनका नित्य वहां पर हो रहा था सप्तलोक में उन्होंने कहा अभी बैठो यह कीर्तन हो जाएगा गान इनका समाप्त होने पर तुमको मैं बतलाऊंगा जो कुछ पूछना हो इशारे से उसको बैठा दिया और वो भी नित्य और गीत उनके दर्शन में ऐसे लग गया कि वो भी दोनों दर्शन से मुग्ध हो गए कुछ देर के बाद में जब कीर्तन समाप्त उनका हुआ नित्य और गीत ब्रह्मा जी ने कहा जी कैसे आए उन्होंने कहा जी ये मेरी लड़की है मैं इसकी शादी करना चाहता हूं आप कृपा करके कोई योग्य वर बताएं ब्रह्मा जी ने कहा जाओ माथुर मंडल में कृष्ण और बलदेव आविर्भूत हुए हैं स्वयं भगवान और इस समय में वो पृथ्वी लोक में द्वारका के अंचल में वो लोग अभी विराजमान है तुम वही जाओ और बलदेव जी इसके योग्य पात्र हैं उससे तुम उनकी शादी करो उस समय में कृष्ण का आविर्भाव हो गया है वो जो गान हुआ वो गान कितने समय का हुआ वहां के लिए मान ले कि आध घंटा की एक घंटा किंतु यहाँ के लिए कितना समय होगा इतने में सत्ययुग चला गया त्रेता चला गया द्वापर भी अवशेष होने को समाप्त होने को है इतना उनको समय लग गया वहां से झट मन की गति से यहां पर आए और उन्होंने कन्या को बलदेव जी के साथ में शादी की बलदेव प्रभु जी ने फल से उसको नीचा कर दिया और अपने योग्य बना लिया तो उस समय में वहां पर कौन है बैराग हिरण्यगर्भ ब्रह्मा वह है ब्रह्मा जो कंट्रोल करते हैं सबको उनके अंदर में एक और होते हैं बैराज ब्रह्मा तो ये बैराज ब्रह्मा के पास में सुमेरु पर्वत के ऊपर मिले और इनसे बात हुई, वो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जो है उनसे बातचीत नहीं हुई। ये जो ब्रह्मा है यही जगत का संचालन यहाँ रह करके करते हैं, इसलिए गाय वहां पर गई, वहां नहीं सुमेरु पर्वत के ऊपर में। और वहीं परमेश्वर ने कहा वैराज ब्रह्मा में और हिरण्यगर्भ ब्रह्मा में समझना चाहिए क्या पार्थक्य है। ब्रह्मा करने से वो एक ही नहीं हो जाएंगे, उसी तरह से शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं कहां पर कौन रूप में किस रूप में कही गई हैं, इन चीजों को नहीं समझने से आदमी नहीं समझ सकता, मिसगाइड हो जाता है। इसलिए मुक्त महापुरुषों के की भाष्य और टीका इत्यादि की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से कुछ जाना जाए, वो भी टीका से भी और एक्सप्लेनेशन भी समझ में नहीं आएगा, टीकाकार या भाष्यकार या कथा कहने वाला एक भाव कह रहा है और हम उसके भाव में सजातीय नहीं है तो दूसरे रूप में समझेगा। आपने मुझे मार डाला, गोपियों ने कृष्ण से कहा, इसका अर्थ क्या है, आपने मुझे मार डाला, तो इसका मतलब सीधा साधा है कृष्ण ने तलवार ली और उनको मार डाला या कैसे भी मार डाला, और इसका एक भाव भी वाला जो बीरह में मार डाला, ऐसा भी हो सकता है, तो कौन सा ठीक है। ये तो आदमी समझ जाए मार डाला तो ये मारी डाला, हाँ तो वैसे ही मार डाला, मरने के पहले ही आदमी कह सकता है किसी ने मारा उसको और मरने वाला आपने तो हमें मार डाला, और थोड़ी देर के बाद में प्राण निकल जाएंगे मर जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। जैसे भीम ने उसको दुर्योधन को मारा, उसने कहा जी हमारा टांग तोड़ दिया अब हमें मार डाला, और 24-25 घंटे के अंदर में मरा, वैसे ही मार डाला। और किस भाव से शास्त्र में कहा गया है ये समझने के लिए वैसा ही भाव होना चाहिए, इसलिए शास्त्र पढ़ करके भी समझ में नहीं आएगा। जहां भागवत पढ़ो वैष्णव स्थान एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण, तो उनकी स्फूर्ति से और इनकी बातों से तब कुछ कुछ समझ में आएगा। देवी क्यों रोती ही ब्रह्मा के पास में गई थी, तब बतलाया है पृथ्वी के लिए पहाड़ पर्वत के भार भार नहीं है, असुर लोगों का दैत्यों का भार ही उनके ऊपर में भार है। दैत्य किसको कहते हैं, देती से जो जन्मे हैं वो, देती से जो जन्मे नहीं है किंतु उन्हीं जैसा भाव वो सभी ही दैत्य हैं, सब दैत्य हैं। दैत्य देती से दानव भी होते हैं, ये सब दानव, रावण देती से नहीं जन्मा किंतु दैत्य दानव, कंस देती से नहीं जन्मा तभी ये दानव, पहले जन्म में जन्मा था ये बच्चे रे, मेरे कम तो चोख खराब हो जाए। ब्रह्मा जी के पास में गाय गई, कल बतलाया था जो किस लिए गई, ये जो भार है ये साधारण के द्वारा दूर नहीं होगा, जिस ब्रह्मा ने इस पृथ्वी इत्यादि का सृजन किया है और इन दैत्यों को भी जन्म इत्यादि दिया है, वो यदि चेष्टा करें तो साजी होगा, या किस लिए हो रहा उनके पास में जाने से संभव है, हमारा दुख दूर हो जाएगा, इसलिए ब्रह्मा जी के पास में गई। ब्रह्मा जी ने देखा कि सब देवताओं को साथ लेना जरूरी है, शंकर जी को साथ में भी लेना जरूरी है, क्यों जरूरी है, मैं जब जाऊंगा क्षीरोदशायी विष्णु के पास में तो मैं सृष्टि करने वाला हूं, संहार करने वाले शंकर हैं और पालन करने वाले कौन है? ये पालन का कार्य है, भार उतार करके किसी का दुख दूर करके उसका पालन पोषण करना, ये उन्हीं का है काम। हमारा काम तो केवल
सृष्टि करना।
सृष्टि माने जीवों का नहीं, जीवों के बारी ये शरीर का, भोगायतन शरीर का सृष्टि करना मेरा कार्य है। और शंकर जी इसको करुणा पूर्वक जब समय होता है तो उसको ध्वंसंहार करते हैं। तो हम लोग जाएंगे अभी उनके पास में, संहार करने की जरूरत नहीं है और सृष्टि करने की भी अभी आवश्यकता नहीं है, इसलिए पालन का कार्य है। विष्णु के पास में हम लोग चले, विष्णु के पास में गए, सोचा इंद्र इत्यादि देवता लोग हैं, ये दिक्पाल हैं, सब प्रकार से रक्षा इत्यादि करते हैं, आधिकारिक देवता हैं, और शंकर जी संहार के देवता हैं, इनको भी साथ ले चले और यदि वो हठात आदेश देंगे तो इनको बतला दिया जाएगा, इनको आदेश वो डायरेक्ट दे देंगे, हम इनको डायरेक्ट आदेश नहीं दे सकते हैं, इसलिए इनको साथ लिया जाए तो वहीं पर साथ ही साथ में सब समाधान हो जाएगा। इसलिए समस्त प्रतिनिधि मिलकर के उनके पास में गए। तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवम वृषा कपिम पुरुषम पुरुष सुप्तेन उपस्थिते समाहित। अब वहां पर जाकर के देवादेव, देवों के देव जगन्नाथ के पास, जगत के नाथ है ये क्षीरोदशायी, इनके पास में गए और समाधि लगा करके पुरुष सुप्त के द्वारा प्रार्थना करते हुए समाधिस्थ होकर के उनसे वो प्रार्थना करेंगे। वृषा कपिम माने क्या, क्या है उसमें वृषा कपिम? वर्षत कामान को वर्षान माने वृष्टि करते हैं कामों की, जैसे जैसे जिनकी कामना होगी वो पूर्ति करने वाले,
क्लेश को दूर करते हैं।
वर्षत कामान और
क्लेशान कामना को पूरा करते हैं, क्लेश को दूर करते हैं।
अच्छा, इसलिए वृषा कपिम कहा, तो ये इसलिए कहा कि आप तो क्लेश को दूर करने वाले हैं और सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए हम देवताओं की पृथ्वी की आप कामना पूर्ण करें। इस प्रकार से समाधिस्थ हो गए। समाधिस्थ होने के बाद में कितनी देर हुई ये नहीं लिखा। गिरम समाधौ गगने समेरितान निशम्य वेधास्त्री दशानुवाच गांग पौर सिंह में सुनताम अमरा पुनः विधीयताम आशु तथैव माचिर। गिरम समाधौ समाधि लगाई, देवता लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि आज तक हम लोगों ने विष्णु का दर्शन नहीं किया, आज ब्रह्मा के भी उपास्य विष्णु का हम दर्शन करेंगे, ये समाधिस्थ हैं। और ब्रह्मा के समाधिस्थ होने पर वो प्रभु इनको दर्शन देने के लिए आएंगे या जो कुछ आदेश देंगे हम लोग भी श्रवण करके हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए वहां पर उनकी प्रतीक्षा करने लगे। इतने में कुछ दिन हो जाने के बाद में गिरम समाधौ गगने समीरितान आकाश में, अर्थात समाधि के आकाश में, समाधि में देखा जो आकाशवाणी हो रही है, आकाशवाणी अलक्ष्य रूप से जो वाणी होती है ये वाणी उनके प्रभु की वाणी है, ब्रह्मा जी के अर्थात गर्भदशाई की ये वाणी है। आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी को भी दर्शन नहीं दिया, समाधिस्थ होने पर भी ब्रह्मा जी को भी जो दर्शन नहीं दे रहे हैं गर्भदशाई, उनके अंशी मूल कृष्ण ब्रज में प्रकट होकर के गोपाल बालकों का साथ में खेल रहे हैं, गोपियों के साथ में खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, मैया यशोदा उनको तारण हर्षण कर रही है, ये आश्चर्य की बात है। ऐसी चीज को सूचित कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी अथवा व्यास जी, इन लोगों के लिए संभव पर नहीं है, किनके लिए? गर्भोदशाई, कर्णोदशाई या गर्भोदशाई इन लोगों के लिए संभव पर है। नारायण के लिए भी जो संभव नहीं है वो गोप गोपियों के साथ में खेलेंगे, उनको दुर्योधन जैसे लोग, जरासंध जैसे लोग उनके साथ में उनको दर्शन करेंगे, कृष्ण को मारने के लिए चेष्टा करेंगे, वाणी के द्वारा उनकी प्रत्यक्ष रूप में निंदा करेंगे, सखा लोग उनसे तरह तरह से खेलेंगे, गौओं को चारण करेंगे, किंतु ये नहीं आएंगे साथ में, गरुड़ दशा ही नहीं। इसलिए ये दिखला रहे हैं कि वो प्रभु अब शीघ्र ही अवतरित होकर के वृंदावन में रसमयी क्रीड़ा करेंगे, जिसको परीक्षित महाराज जी आप सुनना चाहते हैं, अब वही प्रसंग में अवतरित करता हूं। इसका ये तात्पर्य है। निशम्न बेधा, बेधा कहते हैं ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी त्रिदशानुवाच, त्रिदशा माने होता है देवता, देवताओं से उन्होंने कहा, उनकी समाधि भंग हुई, प्रभु की वाणी उन्होंने सुना, उस वाणी को ये लोग भी नहीं सुन सके, देवता लोग कोई भी शंकर भी नहीं सुन सके उनकी वाणी को, केवल ब्रह्मा जी सुने और उन्होंने बतलाया कि मैंने समाधि में ये सुना है। होने से भी क्या, वो तो समाधिस्थ नहीं हुए जो सुने, ब्रह्मा जी ने सुना और फिर उन्होंने ही कहा। गान पौर सिंह में सुनता ममरा पुनः विधियताम आशु तथा माचिरम, गाह माने बाणी, पौरुषिम हमारे प्रभु ने कहा है कि पौरुषी गान में सुनू, हे अमरगण, हे देवतालोक, मैंने अपने जिनकी समाधि में ध्यान लगाया था उन्होंने जो कहा है वही आपसे कह रहा हूं, मैं इनकी वाणी को दोहरा रहा हूं, अपने तरफ से कुछ नहीं कह रहा, उन्होंने कहा है, क्या कहा है, पौरुषम गा सुनो, तुम सुनो, हम वो कह रहे हैं गर्भदशाई जे कह रहे हैं जे पुरुष जो हैं जो उनसे भी श्रेष्ठ हैं उनके भी मूल अंश दिया है, किसको, गर्भोदशाई को, गर्भोदशाई को आदेश दिया, वो आदेश मैं तुमको सुना रहा हूं। इसलिए ये कौन कह रहा है, स्वयं साक्षात कृष्ण ने ही इनको सुनाया, किनको, गर्भोदशाई, और उन्हीं की वाणी को ये देवताओं ब्रह्मा जी से, अब ब्रह्मा जी कहते हैं उन्हीं की बात तुम लोग सुनो, उन्होंने कहा है क्या, विधियता मासु तथा माचिर, बहुत जल्दी से जो उन्होंने आदेश दिया है उसको तुम लोग श्रवण करके जल्दी से जल्दी उसका कार्य रूप में परिणत करो, पूरा एव पुंसांग अवधितो धरा ज्वरा, पूरा एव मैंने पहले ही हमारे यहां आने के पहले ब्रह्मा जी से करें, तुम्हारे आने से पहले ही, समाधि से पहले ही, पुंसांग सवई पुंसांग, सवई पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति, वहां पर पुंसांग माने क्या, पुंसांग शब्द का अर्थ अंत तक अपने मुक्त प्रवृत्ति से कृष्ण में पर्यवसित होता है, इसलिए उस पुरुष ने कहा है पूरा ये पुंसांग, ये कौन कह रहा है, ये गर्भदशाई कह रहे हैं, गर्भदशाई कह रहे हैं जे तुम्हारे मेरे पास आने के पहले ही पुंसान वो पुरुष जो सबसे श्रेष्ठ पुरुष कृष्ण हैं उनको अवधृतो जरा धरा, जरा का ध्वर, धरा का ज्वर, ज्वर माने क्या, ताप, ताप माने दुख, पृथ्वी को जिस ताप या दुख है कि असुर लोग बहुत ही अत्याचार कर रहे हैं, पृथ्वी उससे बाहर से दब गई है और वो सातल में जाने वाली है, इस बात को वो पहले ही जान लिए हैं, भवदभी बंसई, अब आप लोग भवदभी बंसई जदुर जदु उपजन्यताम, यदुषु। अब भवदभी वो जान गए हैं इसलिए वो अवतरित होंगे, आप लोग भी भवदभी है। उनके जो परिकर हैं भवदभी माने उनके जो परिकर हैं भवदभी वंशई, वंशी मैंने सात्विकी, उद्धव, पांडव और जो भक्त हैं ब्रजवासी हैं नंद बाबा यशोदा इत्यादि गोलोक वृंदावन में द्वारका के जो परिकर हैं वो द्वारका के परिकर और जो वृंदावन वाले हैं उनके परिकरों में, विशेष करके ये उनके द्वारकापुरी वाले उनके परिकरों के में जो जदू लोग हैं यादव लोग हैं उनमें जन्नताम आप लोग जन्म ग्रहण करें। जदुकुल माने पांडव भी आ जाएगा, जदुकुल में आप ये वृंदावन के नंद बाबा इत्यादि भी आ जाए, विष्णु कुल वाले और सब जितने हैं ये सभी लोग हो जाएंगे। सा जावत उर्व्या भरमेश्वरेश्वर सुकाल सत्या खपयन चरत भूवि, सा जावत जब तक वो पुरुष इस पृथ्वी में रह करके पृथ्वी का भार हारण करेंगे वो कौन ईश्वरों के जो परम ईश्वर हैं, जब तक ये रहेंगे इस जगत में स्वकाल शक्त्या अपनी काल शक्ति से पृथ्वी का भार हरण करेंगे, जब तक खपयंस चरे भूवि आप लोग भी उनके साथ में रह करके खपयन यानी वहां तक रहे और उनकी सब प्रकार से अनुकूल्य विधान करें पृथ्वी में रहें। इसलिए जब तक कृष्ण थे तब इंद्र आए और कृष्ण के परिकर अर्जुन में प्रवेश कर गए, पवन देव भीम में प्रवेश कर गए, सूर्यदेव कर्ण में प्रवेश कर गए, महाराज धर्मराज जम युधिष्ठिर में प्रवेश कर गए, नकुल सहदेव में अश्विनी कुमार, उसी तरह से और देवता लोग। अच्छा तो देवता लोगों को दुर्योधन इत्यादि के रूप में भी आना पड़ेगा, उनमें असुर रहेंगे, असुरों का समावेश और वह असुर वहां है नहीं, इसलिए इन लोगों से जो भार पड़ा हुआ है तब करने क्यों आ गया सूर्य के रूप में, एक तरह से वो भी तो असुर है नहीं, कुंती के गर्भ में आया और सूर्य के अंश से आया है, उसकी इच्छा नहीं थी किंतु कृष्ण ने अपनी जोग माया से या जैसे उसकी बुद्धि ऐसे कर करके अर्जुन को दुर्योधन को उत्साह दिला करके सब पृथ्वी का भार हरण करने के लिए उसको उस धर्म में रखा, वो भी धर्मात्मा था बहुत दानी था, दुर्योधन ऐसा नहीं था किंतु होने पर भी उसका पक्ष लिया इसलिए यज्ञ पड़ी हो। इसलिए भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य ये कर्ण ये सब धार्मिक व्यक्ति थे किंतु कृष्ण ने देखा जिससे पृथ्वी का भार हरण नहीं होगा इसलिए इनको निमित्त बना करके उसके तरफ में कर दिया और उनके द्वारा असुरों को बार बार लेकर के और धनुष कराया। ब्रह्मा जी की बात सुन करके इंद्र देवृंद शंकर जी और पृथ्वी परमानंद से भर गए, बड़े उत्साहित हुए। गर्भदशाई की बात क्या, आज स्वयं सबके प्रभु यहां आ रहे हैं इसलिए वो लोग बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बिबिंद, क्षीरोदशाई, क्षीरोत्तीर में गए थे ना, क्षीरोदशाई ने आदेश किया है, हे देवगण, पृथ्वी भार हरण के लिए तुम लोग हमारे शरणापन्न हुए हो, माने क्षीरोदशाई कह रहे हैं, किंतु हमने पहले बताया था गर्भोदशाई, ब्रह्मा ने कृष्ण की ही वाणी, अब पृथ्वी को, पृथ्वी के लिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उनके आदेश से ब्रह्मांड का पालन में मैं लगा हुआ, मैं ब्रह्मांड का पालन करता हूँ। इसलिए परम अंशी, हम लोगों के जो परम अंशी स्वयं भगवान गोलोकपति कृष्ण इस बार स्वयं इस पृथ्वी लोक में अवतरित हो रहे हैं, तुम लोग अब उनका जो आदेश है उसको पालन करो। भी ऐसा लिखा है ये भी बतला रहे हैं, गर्भोदशाई इच्छा करने से असुरों का ध्वंस कर सकते हैं और जुगावतार का कार्य कर सकते हैं, युग धर्म का प्रवर्तन कर सकते हैं, किंतु मधुर मधुर लीलाएं जो हैं ब्रज की वो नहीं कर सकते, इसलिए स्वयं कृष्ण वहां पर पधार रहे हैं। बहुत दिन हो गया, अपने इस भाव को जगत को नहीं दे सके हैं, इसलिए उसका आस्वादन करने के लिए और जगत में उस प्रेम का वितरण करने के लिए कृष्ण को जगा, जो कृष्ण आए मैं जाऊंगा, ये भी काम हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, यदि वो इच्छा करते तो वहीं जराने से इच्छा करने मात्र से पृथ्वी का भूभार धारण हो जाता, किंतु लीलाएं नहीं होती, नरवत की उन्होंने लीलाएं की और साधारण लोगों को भी ये दिया है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। एते ही जादवा सर्वे मदगुना एव भामिनी, पद्म पुराण में बतलाया जाता है, बतलाया गया, ये जितने भी जादव हैं हमारे नित्य पार्षद हैं, जादव लोग, कंस जादव था कि नहीं, कंस नहीं था जादव, उस वंश में जन्मा ही नहीं था, ये द्रुमुल दैत्य के वंश में जन्मा था, इसलिए ये जादव नहीं, किंतु साधारण लोग जो नहीं जानते हैं उसको जादव मानेंगे, साधारण दृष्टि से भोजराज बोला गया है किंतु भोजराज था नहीं, इसलिए हमारे अति अत्यंत प्रिय और हमारे न्याय गुण संपन्न है ये सब जितने जादव हैं, विशेष करके प्रद्युम्न, अनुरुद्ध, संकर्षण और सब ये कृष्ण के और दूसरे जो लड़के हैं सांब, ये सब एक एक से महारथी, ये भगवान के गुण के समान हैं, ये लोग चाहे तो पृथ्वी का भूभार धारण इत्यादि कर सकते हैं, किंतु कृष्ण नरवत लीला कर रहे हैं, ये लोग भी नरवत लीला कर रहे हैं, जैसे रामचंद्र जी नरवत लीला करते हुए वो कौन सांपों के गरुड़ नहीं सांपों के पाणों से बंध गए थे, नागपाश में बंध गए थे और उनको खुद नहीं दूर कर सके, गरुड़ जी के आने से वो दूर हुआ, ये सब नरवत लीलाएं हैं। इसमें बतला रहे हैं कि भगवान के आदेश से देवता लोग जदुवंश में प्रकट हुए थे, महाभारत और हरिवंश में देखा जाता है, कुरुक्षेत्र के युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध और जदुवंश ध्वंस के पश्चात जादव जितने थे वो आत्मीय वर्गों के साथ में स्वर्ग में गमन किया उन लोगों ने, ऐसा लिखा है पद्म पुराण के वचन के अनुसार में। और उधर में पद्म पुराण में क्या लिखा, ये लोग मेरे परिकर हैं, हमारे समान बल वीर्य सब इसमें प्रभाव में है। पद्म पुराण के वचन के अनुसार में जादुओं को भगवान का नित्य पार्षद स्वीकार करने पर फिर स्वर्ग में गमन करने की संभावना नहीं हो सकती, वो स्वर्ग में कैसे जाएंगे, क्योंकि पार्षद लोग भगवान के प्रकट लीला के बाद में भगवान के सहित नित्य धाम में गमन करते हैं, किंतु ये स्वर्ग में कैसे जाएंगे। भागवत के वचन के अनुसार में यदि देवगण ही यदुवंश में अवतरित हुए हैं तो फिर ये लोग तो स्वर्ग में जाएंगे, भगवान के नित्य परिकर नहीं, इसलिए इसको सामंजस्य करने के लिए ऐसा बतलाया गया है कि दोनों में कोई भूल नहीं है। द्वारका के या ब्रज के परिकर लोग यहां जब आए तो देवता लोग भी उनके अंदर में प्रवेश करके आंशिक रूप में भगवान की सेवा इत्यादि किया, और जब लीला समाप्त हो गई तो ये लोग स्वर्ग में गए और नित्य परिकर लोग द्वारका में चले गए। बल्कि ये भी कहा गया कि द्वारका धाम गोलोक में नहीं गए, वो यही के वही जत्र सन नहीं तो हरि, या द्वारका को कभी छोड़ करके नहीं जाते, आप वृंदावन वाले वृंदावन छोड़ करके नहीं जाते, उस अप्रकट लीला में प्रविष्ट हो गए। यहीं पर अभी तक लीलाएं हो रही हैं, द्वारका में भी द्वारका की लीला, मथुरा में मथुरा की, वृंदावन की लीला वृंदावन में हो रही है, किंतु मुक्त पुरुष इसको देख सकते हैं। उद्धव जी ने देखा, कभी कभी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी भी देख सकते हैं, ऐसे मुक्त महापुरुषों की लीलाओं को अभी भी देख सकते हैं। इसलिए वैष्णव तोषिणी ने यह कहा है, तेषामेव स्वर्ग गमनम अधिकारास्ते तत् प्राप्तिर्ज्ञेया। ये सब सिद्धांतों को समझना चाहिए। जादव लोग असंख्य हैं, उसमें कोई बद्धजी भी हो सकते हैं, नदी आए ना, उसमें जो अधिकारी हैं वो कृष्ण के परिकर हैं, और जो अधिकारी वैसे नहीं हैं, साधारण लोग जो हैं वो देवताओं के अंश से जो आए थे वो देवलोक में जाएंगे, और दूसरे जो कृष्ण के उसी में रह करके विरोध भी करते हैं साधारण जैसे हैं, उल्लू का क्या होगा, वो वहां तो स्वर्ग जाएंगे न वहां जाएंगे, तब हाँ उनकी सुकृति कुछ यदि हुई होगी उसके अनुसार में उनके ऊपर में विचार किया जाएगा। इसलिए जादव असंख्य है, उनमें से जो देवता लोग थे वो स्वर्ग में गए और उनके जो परिकर वर्ग थे वो नित्य धाम में गमन किए थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बतलाया है कृष्ण के अंश उद्धव हैं, सात्विकी प्रभृति पार्षद ये हैं, देवताओं ने इनमें प्रवेश करके जन्म लिया। इस व्याख्या से भागवत और पद्म पुराण ये सभी लोगों का सामंजस्य हो जाता है। आप लोग सुने हैं पांडव लोग अंत में अंतिम अवस्था में कृष्ण के वियोग होने के बाद में स्वर्गारोहण किया, स्वर्गारोहण में द्रौपदी नकुल सहदेव भीम अर्जुन सभी लोग गल करके खत्म हो गए, मर गए। इसके बाद युधिष्ठिर महाराज एक कुत्ते को लेकर के स्वर्ग में गए, कुत्ता माने ये धर्मराज था, स्वर्ग में गए। स्वर्ग के बाद में वो नित्य धाम में पहुंचे गोलोक, और वहां देखा कि अर्जुन हंसते हुए मुस्कुराते हुए गोविंद के साथ में खड़े हैं और उनका अभिवादन कर रहे हैं, आइए आइए पधारिए विराजमान। ये बड़े प्रसन्न हुए कि हम तो वहां पर उनको छोड़ करके आए और हमसे पहले ये पहुंच गए। द्रौपदी को देखा, नकुल सहदेव को देखा, सब लोगों को देखा। इसके द्वारा क्या बोध होता है, तो महाभारत में झूठ लिखा गया तो ये कैसे, ये मेस्मेरिज्म है, इसमें भक्त लोगों को आनंद होता है ऐसी लीलाओं को श्रवण करने से, भगवान का तत्व जानते हैं, और साधारण आदमी इस तत्व को नहीं जान करके वही कृष्ण का वध हो गया, कृष्ण मर गए, उनको बाण लगा, उनका संस्कार हुआ, उनके शरीर को जला दिया गया इत्यादि, ये सब ऊपर से दिखता है। किंतु इन बातों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। साधारण पाठक लोग गुरु परंपरा से इस चीज को नहीं पाते हैं, इसलिए वो लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं, शुद्ध विचार को नहीं जानते। इसीलिए हरिवंश में देखा गया है, युधिष्ठिर महाराज कृष्ण के परम धाम में जब पहुंचे युधिष्ठिर, तो अर्जुन को देखा कृष्ण के साथ में मुस्कुराते हुए देखा और उनका अभिनंदन करते हुए देखा। यदि हिमालय में अर्जुन मर ही गए होते तो कैसे वो लोग वैकुंठ में पहुंच गए? नहीं, वो मरे नहीं। साई भगवान ने कहा, मेरा यह आदेश है कि जब तक मैं कृष्ण यहां पर लीला करेंगे तब तक देवता लोग यदुवंश में अवतीर्ण होकर के इस पृथ्वी में रहेंगे, तब तक जब तक कि कृष्ण लीला नहीं हो। बल्कि कृष्ण अपनी लीला के पहले ही उनमें युद्ध करा करके और एक जाल जैसा दिखला करके और उनको स्वर्ग में पहुंचा दिया, और अपने परिकरों को अपने से पहले बैकुंठ में पहुंचा करके गोलोक में, और तब फिर गए। अब ये कंक्लूजन करते हैं कि कृष्ण वृंदावन में वृंदावनांतर्गत सदा क्रीड़ति माधव, कृष्ण गोपालकों के साथ में, सखाओं के साथ में, बलदेव के साथ में, गोपियों के साथ में नित्य वृंदावन में क्रीड़ा करते हैं। किंतु सभी के द्वारा देखे नहीं जाते, अनुभव नहीं कर सकते, हम अभी अनुभव नहीं कर सकते। कभी कभी यह संदेह होता है जो तो वृंदावन यही वृंदावन है, तो यहां के जितने लोग हैं सब नित्य मुक्त हैं, तो ये चोरी चमारी करते हैं, अत्याचार करते हैं, लुंठन करते हैं, तो फिर ये सब क्या चीजें हैं? और विशेष करके रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा है, जब किंचित तृण गुलमकी कट मुखम गोष्ठे समस्तम सर्वानंद मुकुंद दैतम लीला अनुकूलम, सब कुछ चिन्मय है, सांप बिच्छू इत्यादि सब। तो ये मनुष्य क्या है? ये मुक्त महापुरुष और आनंद चिन्मय है और कृष्ण के लीला के उपकरण है? नहीं, ये सब माया के जाल के ऊपर में। ऐसा करने से तो सब गड़बड़ हो जाएगा। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा पर जनयिष्यते तत्प्रियार्थम संभवंतु सुर स्त्रिया स्त्रिय वासुदेव कलानंत सहस्त्र बदन स्वरात अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकित्सया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं देवताओं से, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान, साक्षात भगवान वहां पर पुरुष नहीं, ये तीन पुरुष हैं, इनके भी मूल पुरुष साक्षात भगवान माने स्वयं भगवान। एते चांस कला तुम सब कृष्णस्तु भगवान, कृष्ण स्वयं यहां पर अवतीर्ण होंगे। इसलिए वसुदेव गृह में साक्षात भगवान स्वयं भगवान आएंगे, ये कह रहे हैं। तो वो ब्रजेंद्र नंदन क्या है? साक्षात ब्रजेंद्र नंदन होने से ये इनके ये प्रकाश हैं वसुदेव, वासुदेव इस रूप में ग्रहण करना चाहिए। स्वयं भगवान उनको भी कह सकते हैं, किंतु उनसे भी परम रूढ़ी वृत्ति में ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को ही स्वयं भगवान मानना पड़ता है। कोई भेद नहीं है इस वाणी में, ये पूर्ण है, पूर्णतम मथुरेश, पूर्णतम स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, पूर्ण पूर्णतर पूर्णतम के रूप में ग्रहण करना होगा। वसुदगिरे घर में साक्षात भगवान पुरुषा पर, पुरुषों से भी पर श्रेष्ठ, तीनों पुरुषों से भी श्रेष्ठ, उनके मूल अंशी साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अवतीर्ण होंगे। जनयिष्यते तत्प्रियार्थम, तत्प्रिय अर्थम उनके प्रिय करने के लिए अथवा तत् प्रिया अर्थम उनके प्रिया की प्रियाओं की सेवा करने के लिए गोपियों की सेवा करने के लिए सुरा स्त्रिया भी जन्म ग्रहण करें, वो लोग भी जन्म लें। देवता लोग कृष्ण के अनुकूल और उनकी पत्नियां देवियां ये सब कृष्ण की प्रिया राधिका जी के प्रिय करने के लिए वो लोग भी जन्म ग्रहण करें। वासुदेव कलानंत सहस्त्र बदनस्वराद अग्रतो भविता देवेव हरे प्रिय चिकित्सया वसुदेव कला अनंत वासुदेव कला अनंत वासुदेव के जो कला है वो अनंत देव है। कैसे कला है? कृष्ण के वासुदेव हुए और वासुदेव जी के हुए संकर्षण, संकर्षण से महासंकर्षण या नारायण हुए वो क्या कहते हैं उनको वैभव वैभव विलास ना वैभव अच्छा उनसे हो गए नारायण उनके चतुर्भुज में हो गए महासंकर्षण, महासंकर्षण से कर्णदशाई उनसे गर्भदशाई उनसे ये क्षीरदशाई है और उनका एक अंश सहस्त्र बदन अनंत देव है शेष भगवान। शेष किस लिए? इस जगत की सृष्टि ध्वंस होने पर भी रहते हैं, सृष्टि होने के पहले भी रहते हैं, अभी भी वर्तमान है, इसलिए उनको शेष कहते हैं। स्वराट वो भी स्वराट हैं, ये जितने पांच या पांच तत्व हैं संकर्षण उनके बाद में कर्णादिशाई गर्भदशाई क्षीरदशाई शेष अगर तो भविता देवो हरे प्रचिकित्सा वो अनंत देव वो स्वयं अगर तो भविता आगे जन्म लेंगे हरि अर्थात कृष्ण की प्रिय चिकित्सा उनका प्रिय करने के लिए वो आगे ही अवतीर्ण होंगे। विष्णु माया भगवती जया सम्मोहित हो जगत आदिष्टा प्रभु अंशेन कार्यार्था संभविष्यति। कितना बजा? 6:30 बजे बस इतना ही आज रहे, अब इसकी व्याख्या हम दूसरे दिन करेंगे। अब 5:30 से लेकर के 6:30 तक प्रतिदिन बैठेंगे। आज ही पूरा आज मैं थक गया।
चक्षुर्मीत मंच कल्पतरुभ्युताभ्यं वैष्णवभ्यो नमो महापतंडाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यं गौरस्तिषे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्तभंजन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिभ्यो। हा देविका कुम्भरगदगदयाद्यवाच जाचे पत्तभूविदण्डवतोद्भटारति अस्य प्रसादमबुदस्य जनस्य विद्या धर्मिके तव गणी जनम। अङ्गश्यामलिङ्गछटाभिरभितो मन्दे तु कौन्दे वरम् जड्जञ्जाबुदरोचि साङ्गुदवतं सप्तं वरस्य वृन्दारण्यनिवासिनम् हृदिलशब्दामाभिरामोदरम् राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलं जन ध्यायेन् दामि भक्त्याभिहीनापराधलक्ष्यै चित्तास्य कामादिभङ्गमध्ये कृपामयं शरणं प्रपन्ना गौरचंद्राज राधिकायदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय सदभक्ताय यंत्रव्रजंतमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैतायनो विरहता श्रया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं तवैवास्मि तवैवास्मि यजमानि तदादिन इति तुभ्याय राधेतं मे मां शरणम्।
मंगलवार को सितंबर को श्रीमती राधिका जी का जन्म महोत्सव है। आजकल शहर में 144 लगा हुआ है, तो भी हम लोग सब 8-8:30 बजे के अंदर में राम प्रकाश जी के घर पर, बांके के घर पर पहुंच जाएंगे और वहां से सभी लोग उपहार डाली लेकर, क्या कहते हैं इसको, चाव लेकर 9-9:30 बजे तक चले हैं। नहीं तो 10 बजे के बाद में हो सकता है कि पार्टियों का परस्पर गड़बड़ी होगी। एक पार्टी कहती है वो क्या वो लोग परस्पर झगड़ा करेंगे पार्टीवादी राजनीति, उसके पहले ही हम लोग यदि आ जाएं तो शांति के साथ में सब कुछ। दूसरी बात, राधा जी का जन्मोत्सव होता है, जन्म होता है ये राधाष्टमी, कृष्ण के आविर्भाव के 15 दिन पीछे, 15 दिन छोटी है। विशाखा जी का जन्म राधा जी के जन्म के दिन ही होता है, ललिता जी का जन्म 27 दिन पहले होता है, 27 दिन छोटी है, राधा जी छोटी है वो बड़ी है। सुनते हैं कि आज ललिता जी का जन्म आज मनाया जा रहा है सब जगह, किंतु कैसे मनाया जाए यदि 27 दिन यदि बड़ी है राधा जी से, तो कल ही तो परसों तो है राधाष्टमी, तो 27 दिन पहले होना चाहिए,
जन्माष्टमी 12 दिन
पहले। और यदि मान लिया कि 27 दिन पीछे होता है तो बहुत दूर हो जाएगा, 27 दिन पहले ही उनका मानना चाहिए। तो आज तो केवल मात्र 2 दिन का अंतर है, तो ये कैसे इन लोगों ने निर्धारित किए ललिता जी का जन्म, इस पर मैंने सोच विचार अधिक नहीं किया, किंतु मालूम होता कि ये संभवपर नहीं है, कैसे होगा केवल मात्र 2 दिन काम कर। तभी ललिता जी के संबंध में ये हम लोगों को ध्यान लेना चाहिए कि सखियां 5 प्रकार की होती हैं, सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और परम प्रेष्ठ सखी या प्राण सखी, प्रेष्ठ सखी, जिसमें ललिता विशाखा इत्यादि प्राण प्रेष्ठ अथवा परम प्रेष्ठ सखी, इन्हीं को प्रिय नर्व सखी भी कहा जाता है। भी ये पांच प्रकार की सखियां बतलाई गई उनमें ललिता देवी ही सर्वप्रधान है। राधा और कृष्ण दोनों की अत्यंत प्रिय है, कोटि कोटि अर्बुद प्राणों के द्वारा इन दोनों की सेवा करती हैं। ये ललिता देवी सखी दासी दूती तीन प्रकार से ही तीन प्रकार के जितने भी जूथ हैं सबकी जूथेश्वरी है, मालिकाना है, मालिका है। श्रीमती राधिका के जितने भी भाव हैं इनके आश्रित होते हैं, सभी भाव राधिका जी इनमें पाए जाते हैं, इसलिए इनको अनुराधा भी कहते हैं। विशेष करके इतना ये राधा जी को या कृष्ण को प्रेम करती हैं, सेवा करती हैं कि उस प्रेम सेवा के बल पर अत्यंत प्रगल्भ बन जाती हैं, अर्थात उनको भी शासन करती हैं और उनको भी वशीभूत रखती हैं, इसीलिए उनका नाम अनुराधा है। स्वभाव उनका कैसा है, वाम प्रखरा, बहुत प्रखर बोलती हैं, तेज और वाम भाव। यदि किसी कोई गलती देखा राधा जी की तो इनको भी डांट टपट करके शासन करती हैं, और कृष्ण की थोड़ी सी यदि गलती देखा तो उनको भी शासन करती हैं। अवस्था के अनुरूप में ये सब कार्य करते हैं। श्री कृष्ण के शासन से शासन को अतिक्रम नहीं कर पाते, अगर कोई बात कर दें तो उनको मानना पड़ता है। क्या क्या करते हैं, पुष्पमय भूषण बनाने में परम चतुर है, छत्र सज्जा वितान मंडल इंद्रजाल और बंगला में हयाली कहते हैं और इसमें कहते हैं प्रहेली, इस सब में बड़ी चतुर हैं। वृक्षों की भाषा भी जानती हैं, वृक्ष इत्यादि सखाओं का कैसे वृक्षों का पालन पोषण होता है, कब ऋतु में कौन सा फूल कैसे किस प्रकार से लगाना चाहिए, ये सब विषय में माहिर है। समस्त पशुओं की भाषा को भी ये समझती है। इनकी बहुत सी सखियां हैं अनुगत जिनमें आठ प्रधान है, रत्न प्रभा रति कला सुभद्रा वर्तिका सुमुखी धनिष्ठा कलहंसी कलापिनी, ये अष्ट सखियां हैं। ललिता जी की तरह ये सभी तांबूल सेवा करते हैं, राधा जी विशेष उनकी तांबूल सेवा ये ललिता जी का और उनके गणों का कार्य है। ये राधा जी से 27 दिन केवल बड़ी हैं, राधा जी की उम्र 14 वर्ष की, इनकी 14 वर्ष 27 दिन है। इनका वर्ण कैसे है, अत्यंत सुंदर गौर वर्ण, कैसा गोरोचना जैसा पीला हो, गोरोचना आप लोगों ने देखा है गौ के खुर से निकलता है, स्वाति नक्षत्र का पानी यदि गाय के खुर में प्रवेश कर जाए तो उसमें गोरोचन पैदा होता है, आजकल आर्टिफिशियल रूप से करते हैं, इससे बहुत औषधि बनती है गोरोचना से, उसको टुकड़े कर दिया जाए, जैसे हल्दी है टुकड़ा कर देने के बाद, कच्ची हल्दी पकी हुई नहीं, कच्ची हल्दी को टुकड़ा कर दिया जाए तो जैसा वो गौर वर्ण होता है सोने का रंग जैसा, ठीक वैसे इनका रंग है। वसन कैसा है, सिखी पिच्छ मयूर पिच्छ जैसे बहुरंगार सतरंगार होता है, उससे भी अत्यंत शोभित, और राधा कुंड में ललितान आनंद कुंज में ये निवास करती हैं, जावट में इनका वास है, पिता का नाम विशोक माता शारदी,
शारदी
शारदी इनका जन्म ऊंचे गांव में है। पति का नाम भैरव गोप है, भैरव गोप जो कि गोवर्धन मल्ल और अभिमन्यु दोनों का मित्र है। ये तो उनका ये है विवरण। सब लीलाओं में राधा और कृष्ण के निकट रहती है। वृंदावन के अंतर्गत नंदगांव में एक ललिता कुंड है। ललिता कुंड में एक बहुत बड़ा भारी झूला है, उस सरोवर के पास ही नारद जी प्रेम परीक्षा करने के लिए आते हैं और राधिका जी के साथ में, ललिता जी के साथ में कृष्ण को बैठा कर झूले में झूल रहे हैं कृष्ण, और उसी समय में इनको दिखला करके और राधिका जी को मान कर आते हैं। वो सब कथाएं वहां पर बढ़ी। इसी तरह से समस्त लीलाओं में जो कि कृष्णदास कपिराज गोस्वामी गोविंद लीलामृत में, जीव गोस्वामी कृष्ण भावना में और कृष्ण भावामृत चक्रवर्ती ठाकुर के, इसमें ललिता जी का बहुत ही वर्णन उपलब्ध होता है। श्री रूप गोस्वामी ने ललिता जी का अष्टक लिखा है, उसको पाठ करने से उनकी कृपा पाई जाती है। मैं संक्षेप में इसको पाठ करता हूं, आप लोग इसको श्रवण करें। राधा मुकुंद पद संभव भर्म बिंदु निर्मंचन उपकरणी कृत देह लक्षण कुटुंब सौहद विशेष प्रसाद प्रगल्भन देवी गुणई गुण सुललितांग ललितांगनान। मैं अत्यंत सुंदर सुललित जो ललिता जी हैं, समस्त गुणों से अलंकृत जो अत्यंत ललित राधिका जी हैं, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं। वो कैसी हैं? राधा मुकुंद पद संभव धर्म बिंदु, राधा माधव के चरण कमलों की झलकती हुई पसीने के बूंदों को पूछने के लिए कोटि कोटि अपने प्राणों को न्योछावर कर देती है। ऐसे ललिता जी उनके धर्म बिंदु को निर्मंचन करने के लिए कोटि कोटि प्राण अर्बुद को लगा देती हैं और अत्यंत उन्नत सौहृद भाव के द्वारा सौहृद रस जो सर्वदा अवश्य बनी रहती है। निर्मंचनो उपकरणी कृत देह लक्षण, कोटि कोटि लाख लाख शरीर धारण करने की लालसा रखती हैं इनके एक धर्म बिंदु को पसीने के बिंदु को पूछने, तो बतलाओ इनके प्रति कितनी सेवा की भावना है। वो भी कहा पसीना, कौन सा पसीना? पद संभव धर्म बिंदु, अंगों के अंगू कमल की तो बातें छोड़ो, उनके चरण कमलों में चलने से जो चरण में जो पसीना आ जाता है, उस पसीने को पूछने के लिए अपने अपने कोटि कोटि अर्बुद अर्बुद प्राणों को शरीरों की आकांक्षा करती हैं और उसको न्योछावर कर देती हैं। ऐसी ये ललिता जी और उत्तुंग सौहृद विशेष प्रसाद प्रगल्भन, और उन दोनों के प्रति अत्यंत उत्तुंग, उत्तुंग माने अपनी चरम सीमा तक जितना हो सकता है, जहां तक प्रेम और सौहृद बढ़ सकता है। सौहृद माने क्या? सौहृद हृदय से जो आंतरिक प्रीति है, ये सहस्र बरस जो है इसके द्वारा कृष्ण के प्रति कितनी और राधिका जी के प्रति अपना सौहृद भाव, सौहृद माने सखी का भाव, बहन का भाव, माता का भाव, ये सब उसके अंतर्गत में आ जाते हैं। ये सब के कारण विशेष बसात प्रगल्भम, वशीभूत किनको करती हैं? राधा और कृष्ण दोनों को, और इसी कारण अत्यंत प्रगल्भ हैं। प्रगल्भ माने शासन वाक्य करने वाली है, अरे तरे डांटने फटकारने वाली है, एक विधि मार्ग से आदर युक्त प्रेम होता है, उसे विधियों को लेकर के चलना पड़ेगा। माता पिता का आदर करो, पति को परमेश्वर मानकर सेवा करो, गुरु की आज्ञा का कभी उल्लंघन मत करो, उनके अप्रिय वाक्यों को मत कहो, यही सब तो विधियां हैं। ये उसको लांघ जाती है उस प्रेम के कारण, प्रगल्भ होने के कारण। और कृष्ण को कहते हैं, कहती हैं, ये इधर मत आना, रोक देती है। राधिका जी को कहते हैं, उस छली कपटी धूर्त से कोई अब संबंध मत रखो, और उनकी बात को मान करके वो चुपचाप बैठ जाती हैं। कहती कि उधर मत देखना, वो आ रहा है, उधर मत देखना। और राधा जी डर रही हैं, और डर करके क्या कर रही हैं? ऐसे देख रही है, कहते उधर मत देख रही है, फिर मत देखो, यह धूर्त है। इस तरह से शासन करने वाला वो कहते हैं, मैं क्या करूं, मैं तो आपकी बात मान लू लेकिन हृदय से नहीं मानता, मैं क्या करूं। इस तरह से अतुंग सौहृद विशेष प्रसाद प्रगल्भम, जो अत्यंत प्रगल्भ, प्रगल्भ माने क्या, कठोर वचन बोलने वाली, इसको ऐसे समस्त देवी गुणों से, अपराकृत गुणों से अलंकृत सुललित ललिता जी को मैं पुनः पुनः नमस्कार करता हूं। राका सुधा किरण मंडल कांति दंडी भक्तस्यं चकित चारु चमूर नेत्रं राधा प्रसादं विधान कला प्रसिद्धं देवें गुणैः ललितां ललितां। जिनके मुख मंडल की शोभा राका सुधा किरण मंडल, राका कहते हैं पूर्ण चंद्र, पूर्ण जो चंद्र होता है पूर्णमासी के चंद्र को, और विशेष करके शारदीय को, शरद ऋतु में वर्षा से आकाश धुल जाता है, तनिक भी मैला नहीं रहता, और उस समय अत्यंत सुंदर स्निग्ध अमृतमय उसकी किरणें निकलती हैं। उस समय में राधा की सुधा किरणों से मंडल से मंडित जो कांति है, उसको दंड देने वाली राधिका जी की सुंदर कांति है। दंड देना माने उसको भी पराभूत करने वाली। वक्त्रस्यम, ऐसे वक्त्र अर्थात मुखार बिंदु से युक्त, चकित चारु चमूर नेत्रान, चकित चारु चमूर नेत्रान, ये अलंकार है, शब्दालंकार। चकित, चकित माने क्या, आश्चर्य चकित होकर इधर उधर देख रही है, चारु माने अत्यंत सुंदर, चमूर नेत्रा, चमूर माने क्या, हिरण, कौन हिरण, अत्यंत सुंदर कोई हिरण का बच्चा, और जैसे वो देखता है ऐसे ही नेत्र वाली है ये, जिनके मुखमंडल की शोभा पूर्ण चंद्र मंडल की कांति का तिरस्कार करती हैं, जिनके चकित हुई हिरणी के नेत्रों की भांति अतिशय नेत्र चंचल हैं, और किसी का नेत्र ऐसा होता है सूखा निरस देख रहा है, उदास होने पर ऐसा होता है, और किसी का होता है आंखों में कुछ अश्रु के कण मिले हुए होते हैं, और वो सरस दिखते हैं, ऐसा ही रणियों का है। ऐसे जिनके नेत्र अत्यंत चंचल है, किस लिए चंचल है, राधा जी कहां है, कृष्ण कहां है,
बस इसलिए सब समय चंचल है।
सुमति राधिका की देश रचना की कला में राधा प्रसाधन विधान, राधा जी को प्रसाधन, प्रसाधन माने प्रकृष्ट रूप से अलंकृत करने के लिए उनके अंगों को नाना प्रकार के वसन भूषण इत्यादि के द्वारा अलंकृत करने में कौन 16 आभरण और 32 द्वादश आभरण और 16 श्रृंगार 32 आभरण, इन सब में परम पटु हैं, अत्यंत उन्नत पटु जो हैं प्रसिद्ध हैं। देवी गुणी सुललिता स्त्री जनोचित समस्त संपूर्ण अशेष गुणों की जो खान श्रीमती ललिता जी हैं, मैं उनके शरणागत होता, मैं उनको नमस्कार करता। लास्यो लसत भजत भुजग शत्रुपत्र चित्रपटान सुकाभरण कंचुलितान चितांगन गोरोचना रुचि विगरहण गौरीमाणम देवेंग नयीशु ललितां ललितां नमा। समस्त गुणों से अलंकृत अत्यंत सुललित श्रीमती राधिका जी का मैं को मैं नमस्कार करता हूँ। कैसी लास्यो लसत भुजग शत्रु पतित्र चित्र, भुजग शत्रु, भुजग माने सर्प शत्रु, कौन मयू। जब यह लास्य उल्लसत अत्य आनंद में भर करके अपने पंखों को उठा करके उल्लसित होकर के रंग बिरंग पंखों से को उठाकर और तरह तरह की भंगी पूर्वक नृत्य करता है, कभी इधर से इधर उधर से उधर अत्यंत सुभंगी से नृत्य करता है। जैसे रंगीन पत्र वस्त्रों को फहरा दिया है, झलकते हुए सीमंत और हार आदि विचित्र रत्न आभूषणों की और अति विचित्र कंचुकी से जिनका श्री अंग विभूषित है, जो अपनी गौर कांति से गोरोचना की कांति को पराभूत करती हैं, उन असीम गुणवती ललिता देवी को नमस्कार करता हूं। ऐसे ही ये मधुर इनका चलना कैसा है, मैं उनके समान, जबकि अपना उल्लसित होकर के प्रेम में भर करके अपने पंखों को रंग बिरंगे पंखों को फहराते हुए नृत्य करता है, ठीक ऐसे ही चलने में ये या नृत्य करने में है। और पतंशु का भरण कांचुली कांचितांगन पट अंशुक, मयूर पंख जैसे ही सुंदर वस्त्र को धारण करने वाली नाना प्रकार के रत्न आभूषण और कंचुकी अंगों पर धारण करने की कंचुकी इत्यादि से शोभित है। गुरोचना रुचि विगरहण गौरी मानन, गुरोचना के भी रुचि को अर्थात कांति को माफ करने वाली है, पराभूत करने वाली ऐसी ललिता देवी, समस्त गुणों की खान ललिता जी को मैं नमस्कार करता हूं। ये सब किस लिए कह रहे हैं, एक एक गुण गुण का जो वर्णन कर रहे हैं इसका लोभ है उनमें पाने का लोभ, इसलिए जिनके पास है तो वही तो दे सकता है, इसलिए उनकी इस प्रकार से ये किस लिए जरूरत है, राधा कृष्ण की जुगल की सेवा करने के लिए ये सब गुणों की आवश्यकता है। राधा जी यदि एक कण मात्र भी इन गुणों को हम लोगों में संचरित करें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए धूते बजंद तने तनु सुष्ट बामनं मां दक्षिणा भव कलंकी लाघवाय राधे गिरा सुनु हितामिति शिक्षयन्ति देवी गुणै सुललितां ललितां नमः। सब गुणों से संपन्न विशेष करके प्रखर प्रखरता आदि गुणों से अलंकृत सुललिता ललिता जी को मैं नमस्कार करता हूं। कैसा धोते ब्रजंद तने तनुसुष्ट बांधन, हे राधा जी को कहती है हे कलंकिनी राधे, तुमको यह ज्ञान नहीं, पास पड़ोस के लोग तुमको कलंक ही निकालते हैं, तुम्हारी सास और ननद तुम पर कलंक लगाते हैं और तुम फिर भी नहीं सावधान होती चेतती, मैं तुमको सावधान करती हूं। राधिके तुम मेरी हितकर बातों को सुन, थोते बजंगत मां दक्षिण आभव कलंक निलाघवा राधे गिरम सुनु हिताम इति शिक्षयन, शिक्षा देती है जिनको राधे जी को, ये शिक्षा विश्व ब्रह्मांड को शिक्षा देने वाली कौन है, यहां तक कि कृष्ण को भी शिक्षा देने वाली ये राधा जी है, उनको कोई शिक्षा देने वाला, किंतु अपने प्रेम से इनको भी शिक्षा देती है ये ललिता जी। तुम मेरी हितकर बात सुन, देखो ब्रजेंद्र नंदन बड़े धूप हैं। धूप किसको कहते हैं, धूप माने, धूप माने क्या, चालाक में अंतर है इसमें, धूप धूप उसको कहते हैं कि ऊपरी बातों से सबका मन रखने की चेष्टा करते हैं किंतु भीतरी में कुछ और है, इसको कहते हैं धूप। जो आए तुम ही हमसे सबसे अधिक प्यारी है, तुमसे बढ़कर के और कोई प्यारा नहीं, किंतु काम में उल्टा देखते हैं, इसको कहते हैं धूर्त। उनके प्रति तुम दाक्षिण्य भाव मत प्रकाश करो, अनुकूल मत बनो। उन्होंने कहा जी आ जाओ, बस चली गई, कहीं इधर सुनो तो चली गई, जो कहे उसका ठीक उल्टा करना, जिनको निकट बुलाए तो तुम उधर जाना, इधर गए तो उधर जाना, निकट जाते ही तुम लौट जाना, बल्कि सर्व तो भावन प्रतिकूलता ही प्रकाश करो। इस प्रकार श्रीमती राधिका को जो शिक्षा देती हैं उन समस्त गुणों की खान, किस लिए, प्रसन्न करने के लिए कृष्ण को और राधिका जी को प्रसन्न करने के लिए। प्रेम की गति कुटिल होती है, कुटिल होती है, प्रेमी लोग भी इसको समझ सकते हैं, दूसरा नहीं समझ। श्रीमती राधिका के प्रति करें राधिका में भी ब्रजपते कृत आत्मजेन कूटम मनात अभिविलोक्य विलोहिताख्यम बाक बंग भी तम अचिरेन विलज्जयंतिम देवीं गुणी सुललितां ललितांगमान, समस्त गुणों से विभावित सुललित श्री ललिता जी को मैं पुनः पुनः नमस्कार करता हूं। राधिका जी के प्रति कृष्ण की थोड़ी भी छल चातुरी पूर्ण बातों को सुन करके अत्यंत क्रोधित होकर आप बड़े बुद्धिशील जैसे सत्यवादी हैं, महाराज हरिश्चंद्र जैसे हैं, इस तरह से उनको लज्जित करते हैं, आपके समान सत्यवादी और कोई नहीं। यदि राधिका जी के प्रति कृष्ण ने तनिक भी कुछ कहा, छल चातुरी पूर्ण बातों को कहें तो क्रोधित होकर के बोलती है, आपके जैसा सर्व पृथ्वी में आज तक किसी ने जन्म नहीं लिया और आप विशुद्ध प्रणयी हैं। विशुद्ध प्रणय किसको कहते हैं, एक एक व्यक्ति के प्रति ही शुद्ध प्रेम रखना, जैसे रामचंद्र जी शुद्ध प्रणयी, किसी भी स्थिति में सीता को छोड़ करके और किसी से विवाह शादी या प्रेम नहीं किया किसी भी स्थिति में, इसलिए ये दाक्षिण्य भी कहलाते हैं और शुद्ध प्रणयी। तो ये कहती हैं उनको सत्यवादी, आप बड़े सत्यवादी हैं अर्थात तो आप सत्यवादी नहीं हैं, आप बड़े सरल हैं, आप बड़े कुटिल हैं, आप विशुद्ध प्रणयी हैं, आप में प्रणय नाम की कोई गंध नहीं, इस प्रकार से वचन भंगी के द्वारा कृष्ण को लज्जित करती हैं। वे सब गुणों की निधान परम मनोहरा ललिता जी को मैं स्मरण करता हूं। वात्सल्य वृंद बसत इन पशुपाल राज्ञा सख्यानुशिक्षण कलासु गुरु सखीनाम राधा वला वरद जीवित निर्विशेषां देवी गुणई सुललितां ललितांगनमान, समस्त गुणों से देदीप्यमान श्रीमती ललिता जी को मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। जो वात्सल्य वृंद बसतिम पशुपाल राज्य, पशुपाल नंद बाबा, उनकी रानी यशोदा जी राज्ञान, ये कैसी हैं? वात्सल्य वृंद बसति, यशोदा जी वात्सल्य रस की निवास भूमि है। बसति माने निवास भूमि, आवास, इसमें वात्सल्य रस परिपूर्ण रूप में भरा हुआ है। सारी सखियों को क्यों कह रहे हैं? ऐसे ही आप वात्सल्य वृंद की बसती हैं, यशोदा जैसे। किसके प्रति? सब सखियों के प्रति। वात्सल्य स्नेह से ऐसा कृष्ण के प्रति प्रेम की शिक्षा दे करके सबको पालन पोषण आप करने वाली हैं, ऐसे वात्सल्य वृंद की बसती आप हैं। अथवा गोपराज जो नंद बाबा हैं, उनकी महिषी यशोदा जी हैं, उनके वात्सल्य रस की निवास भूमि, इनको राधा जी जैसे ही प्यार करती हैं। जैसे राधा जी को कहते हैं कि तुम भी कुछ प्रसाद पालो, तुम कृष्ण जैसी ही हमारी प्यारी है, जिस कृष्ण जैसा प्यारा है उससे भी अधिक तुम हमारी प्यारी और गोदी में ले लेती है, लालन पालन कर। और वैसे ही ठीक इनको भी अपनी पुत्री मानकर ललिता जी को स्नेह करती है, इसलिए वात्सल्य वृंद उनका वात्सल्य रस है, वो समस्त इन्हीं पर ढलक गया है, गिर गया है, इसलिए वात्सल्य रस की ये खान हो गई है, निवास भूमि है उनकी। सारी वात्सल्य रस के यही अधिकारी मानो है। सारी सखियों को सख्य, सख्य माने सखी भाव की शिक्षा देने वाली, उनको सब प्रकार के गुणों की शिक्षा देने वाली, कैसे सेवा होगी उस सेवा की शिक्षा देने वाली, श्रीमती राधिका और दाऊ जी के, राधिका जी और राधा, राधा माने राधा और बल, बलावरज, बलावरज पीछे जन्म लेने वाले, अवर, अवर माने पीछे, बलदेव के पीछे जन्म लेने वाले ये जो कृष्ण हैं, ये राधिका जी और दाऊ जी के छोटे भैया, जिनके प्राण स्वरूप हैं, जीवित निर्विशेषण, बिना इन दोनों के जीवित नहीं रह सकती, ऐसे ही उनके प्राण स्वरूप हैं, उन निखिल गुणवती परम मनोहरी श्रीमती राधिका जी का मैं नमन करता हूं। जा काम की ब्रज कुले विश्वानु जाया प्रेक्ष स्वपक्ष पदम अनुद्यमान शब्दस्तिष्ट खटलेन कृतार्थयन्ति देवीं गुणेषु ललितानु ललितानु। जा काम अपी, कोई भी, जा काम अपी, कोई भी ब्रजकुले विश्वान, ब्रजकुल में रहने वाले विश्वान की जाया श्रीमती राधिका को प्रेक्ष माने लक्ष्य कर, स्वपक्ष उसे कहते हैं, बल में आती है, मैं राधिका के पक्ष में सखी होकर के उनकी सेवा करूं, ऐसे अनुरुद्ध, अनुरुद्ध माना ऐसे अनुरोध करने वाली, अनुरुद्ध माने मैंने क्या, ऐसे अनुरोधवादी, ऐसी इच्छा करके मैं राधिका जी की सेवा करने वाली उनकी सखी हो जाऊं, उनकी पाल्य दासी हो जाऊं, ऐसे यदि कोई अनुरुद्ध माना अनुरोध करने वाला है, प्रार्थना करने वाला है किससे, ललिता जी से, तो शब्दस्त दिष्ट घटने न कृतार्थ है, शब्द शब्द मैंने तत्ना पद तद अदिष्ट घटने न, उसके इस अभिलाषा को घटाकर मैंने दे करके कृतार्थ है, तो उसको कृतार्थ कर देती है, बहुत ही दुर्लभ चीज है, किंतु उसको भी यदि इनको कोई प्रार्थना करता है, अनुरोध करता है, तो वो साथ ही साथ में भीतर के हृदय के भाव को जान करके और उसको प्रदान करते हैं। ब्रज भर में कहीं भी किसी युवती को देख करके अपने प्रिय सखी राधिका जी के प्रति स्वपक्ष की गंध है इसके अंदर में, यह राधिका जी का पक्ष ग्रहण कर, ये यदि जान लिया तो क्या करती हैं, उसी समय सारी उसकी मन कामनाओं को पूर्ण करके कृतार्थ कर देती है और राधा जी की पाल्यदासी बना देती है। ऐसी परम मनोहरी, मनोहारिणी, सर्वगुण संपन्ना ललिता जी के चरणों में मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूं। राधा गजेंद्र सुतसंग मरंग चर्या बरजान विनिश्चितवती निखिलोत्सवेभ्य तान गोकुल प्रिय सखी निकुरंब मत मुख्यान देवी गुणई सुललितांग ललितांग राधा ब्रजेंद्र सुत संगम रंग चर्जा राधा गोविंद के परस्पर मिलन कराकर उनका मनो विनोद करना ही उनकी विलास में जो रंग है मिलन में उस रंग चर्जान चर्जान माने परिचर्या इत्यादि के द्वारा बरजान विनोद करना ही इनका सर्व अभिष्ट है। दूसरे निखिल उत्सवों में से इन विनोदन कार्य में ही जिनकी अधिक स्पृहा है बरजान बेनिश्चितवती निखिलोत्सव जितने भी निखिल उत्सव है उनमें इन दोनों की सेवा करना ही जिनका प्राण के स्वरूप है अधिक प्रिया है। भोग की कामना नहीं है इसका ये तात्पर्य। गोकुल की प्रिय सखियों में भी सब प्रधाना है तान गोकुल प्रिय सखी निकुरंब निकुरंब माने समूह समूह में जो मुख्या सब में जो श्रेष्ठ है ऐसे सारे गुणों की धाम स्वरूपा ललिता जी को मैं नमस्कार। अब हम लोग ललिता जी के प्रति नमस्कार कर और आत्मसमर्पण कर उनसे प्रार्थना कर अब चैतन्य चरितामृत से श्रीमती राधिका के संबंध में जो वर्णन किया गया है उसको हम आरंभ कर चौथा अध्याय आदि चैतन्य चरितामृत का आदि लीला चतुर्थ परिच्छेद को हम लोग जहां तक होगा जब तक चलेगा तब तक हम लोग पूर्ण रूप में इसको पाठ करेंगे। चतुर्थ स्कंध खूब सावधानी के साथ में इस सबका श्रवण करें। वो ललिता के श्रीमती राधिका जी के जन्म के दिन में जैसे कृष्ण के लिए हुआ था ना स्तव स्तुति प्रार्थना इत्यादि हम लोग 7 बजे से आरंभ किया ऐसे ही 7 बजे से हम लोग आरंभ करें। उसके पहले आरती होगी कीर्तन होगा इसके बाद में हम लोग फिर बैठेंगे स्तव स्तुति प्रार्थना इत्यादि हम लोग सब करेंगे। इसके बाद में चाव आएगा 9 बजे तक और इसके बाद में अभिषेक करेंगे दूध दही घी गुड़ा मधु इत्यादि के साथ में विधिवत सब लोगों को जो कि दीक्षित हैं उन सबको सुजोग देंगे हम लोग और इसके बाद में प्रसाद वितरण करके उत्सव को समाप्त करेंगे और सायंकाल उनके संबंध में हम लोग वर्णन करेंगे और फिर चैतन्य चैतामृत इत्यादि को हम लोग ग्रहण करेंगे। श्री चैतन्य प्रसादेन तद्रूपस्य पिन्नयनम बालोपकृते शास्त्रम दृष्टा ब्रज विलासिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कस्तूरी मंजरी हैं और राधा कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं। रूप गोस्वामी के अनुगत जनों में से एक अन्यतम है ये विशेष करके रूप और रघुनाथ जी के ये कृपा पात्र हैं। वैसे तो समस्त गोस्वामियों के ही हैं। इन्होंने अपने प्रेम से प्रेममयी उपासना से राधा कृष्ण का दर्शन किया वृंदावन का दर्शन किया नित्यानंद प्रभु जी की कृपा से इनको सब कुछ प्राप्त हुआ। वृद्ध वयस में इन्होंने चैतन्य लोगों के महाप्रभु के जितने भक्त लोग थे उस समय रूप गोस्वामी तो नहीं थे उनके कृपा पात्र गोविंद मंदिर के पुजारी हरिदास जी और सब वैष्णव थे लोकनाथ गोस्वामी थे रघुनाथ दास गोस्वामी थे रघुनाथ भट्ट भी थे रूप सनातन जी ने और सब वैष्णव लोग थे सब। उन्होंने सबसे आदेश मांगा सब लोगों ने आदेश दिए किंतु भूगर्भ गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी प्रकाश प्रबोधानंद सरस्वती इत्यादि निरपेक्ष वैष्णव लोगों जो अकिंचन दीन ही अपने को समझने में उन लोगों ने कहा हम तुमको बतला रहे हैं आशीर्वाद भी दे रहे हैं और उनकी लीलाओं का वर्णन भी तुमको हम बतलाएंगे किंतु हमारा नाम कहीं मत लिखना और हमारी प्रशंसा कहीं मत करना इसलिए नाम तो दिया है किंतु उनकी प्रशंसा इत्यादि उनके आदेश को पालन करने के लिए
नहीं दिया,
किंतु जितने भी इसे तल्य चैतामृत में दिया है सब उन्हीं लोगों के विचारों को इसमें दिया है, विशेष करके रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद इत्यादि के विचारों को दिया है। महाप्रभु की लीला सबसे गंभीर लीला है, यहां तक कि कृष्ण लीला से भी गंभीर है। इसको साधारण लोगों के हृदय में प्रवेश करना बड़ा भारी कठिन है, विशेष करके चैतन्य महाप्रभु उस प्रेम को देने के लिए आए हैं जिसको आज तक आदिभूत जितने भी अवतार हैं यहां तक कि कृष्ण भी स्वयं नहीं दे सके हैं, उस प्रेम को सरल सहज तरीके से बहिर्मुख लोगों को भी देने के लिए आए और उसको नाम और प्रेम के माध्यम से उसको वो दिया जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, बड़े बड़े सिद्ध भक्तों के लिए, प्रेमी भक्तों के लिए भी जो बहुत कठिन है, नारद जैसे परम श्रेष्ठ भक्तों के लिए भी जो कठिन है, कलयुग जीवों को साध रूप में देने के लिए ही है। इसमें से तीन कारण का चतुर्थ श्लोक, चतुर्थ अध्याय, तृतीय अध्याय, प्रथम द्वितीय तृतीय में तीन कारणों को बतलाया जो महाप्रभु किस लिए आए, और उसमें तृतीय इस अध्याय में प्रथम आदि के तृतीय में उन्होंने अनर्पित चरही चिरा करुणावतीर्ण कलो समर्पयी तुम उन्नतोज्वल रसान स्वभक्ति हरि अपूर सुंदर दूत कदम्ब संगीत सदा हृदय सुंदर सचिन। इस श्लोक को उन्होंने रूप गोस्वामी के विदग्ध माधव से ग्रहण किया, उसमें नंदी मुख्य रूप में ये वस्तुतः मंगलाचरण के लिए उन्होंने मंगलाचरण में उसी को लिया चैतन्य चैतामृत के चतुर्थ श्लोक के रूप मंगलाचरण के रूप में अपना नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हमारे द्वारा किया हुआ मंगलाचरण ये प्रभु सुनेंगे कि नहीं, किंतु रूप गोस्वामी के द्वारा किए हुए मंगलाचरण को कृष्ण अवश्य श्रवण करें। इसलिए रूप गोस्वामी की महाप्रभु जी की कृपा पाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, मंगलाचरण किया। हम लोग को भी ऐसे ही मंगलाचरण करना चाहिए, अपना नया बना करके करने से नहीं होगा, महाप्रभु के जो परम भक्त है उन्हीं का मंगलाचरण इत्यादि हम लोग कर सकते हैं। कहते हैं कि ये विषय तो बहुत गंभीर है जो कि नारद इत्यादि को नहीं मिला, ब्रह्मा को नहीं मिला, शंकर को नहीं मिला, उद्धव जी जैसे भक्तों को नहीं मिला, केवल देखे तक तक ही लगा करके आश्चर्य चकित होकर के किंतु मिला नहीं, ऐसे प्रेम को देना बहुत कठिन है, किंतु चैतन्य महाप्रभु इसको दिया इसी के लिए आए थे और दूसरा कोई कारण नहीं था। बड़ी भक्ति इसके पहले बहुत बहुत युग युगांतरों में उनके अवतारों ने ये दिया, असुरों का संहार भी किया उन लोगों ने, यहां तक कि नाम का भी, युग धर्म नाम का भी प्रचार उन लोगों ने किया, सब कुछ किया, किंतु किसी ने नाम और प्रेम नहीं दिया। प्रेम माने उन्नत उज्ज्वल रस को उन्होंने किसी ने नहीं दिया, आस्वादन कृष्ण ने किया केवल, किंतु चैतन्य महाप्रभु ऐसे गंभीर विषय को लेकर के सहज सरल रूप में सबको दिया। कहते हैं कि ऐसा एक तरफ में प्रेम इतना दुर्लभ इतना गंभीर, चैतन्य श्री चैतन्य प्रसादेन तद्रूप विनिर्णयम बालो अपि मूर्खो अपि अज्ञानो अपि, अज्ञानी जो है जिसको प्रेम का पता नहीं है ये प्रेम क्या चीज है, इस प्रेम को तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है।